आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धर्सेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये 16वीं पुस्तक जो शेष अनुयोग द्वार है, उसमें संकम अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 454 पर आ गए। 454 प्रदेश संक्रमण की बात चल रही है अपनी, उसमें स्वामित्व और फिर उसके अल्प बहुत्व आदि की बात हुई है। अब यहाँ काल की प्ररूपणा चलेगी, ये भुजाकार और अल्पतर की बात चल रही कल से। देखो हमने 453 पर क्या देखा था, वहां देखते हैं। देखो भुजाकार संक्रम का कथन करते हैं नीचे, वहां पूछा था कि मति ज्ञान सेकंड लाइन में कि मति ज्ञानावरण का भुजाकार, भुजाकार ने पहले प्रदेश संक्रम अल्प है फिर बाद में ज्यादा होता है, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक कौन है, तो कोई भी जीव हो सकता है, अन्यतर जीव कहा। अवक्तव्य संक्रामक कौन होता है, तो कैसे उसका संक्रामक परिपतमान, परिपतमान का अर्थ किया था उपशम श्रेणी से गिरने वाला, अन्य तरह ने कोई भी उपशांत कषाय होता है। शेष जो हमने देखी थी ध्रुवबंदी प्रकृति वगैरह, अन्य प्रकृतियों की भी प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के भी समान है। और बाकी जो एक लिस्ट बताई थी अन्य अन्य, उसमें कहा था उनमें अवस्थित संक्रम नहीं है, ये बात हमने कल स्वामित्व में देखी थी। अब भुजाकार का काल एक जीव की अपेक्षा या अल्पतर का काल वो अब बताएंगे। यथा मति ज्ञानावरण के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र है। इसके अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र है। कोई भी जीव जब जब बताया था तो लगातार अधिक 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 प्रदेश संक्रम उसको भुजाकार कहेंगे, और लगातार प्रति समय घटते हुए प्रदेश संक्रम उसको अल्पतर कहेंगे। वो दोनों ही एक समय कम से कम और अधिक से अधिक पल्ले के असंख्यात भाग तक। अवस्थित संक्रामक का काल हमने देखा था ना, उसका ये लगातार की बात चल रही है ना, कोई भी जीव लिया है उसमें अल्पतर होता चला जाएगा। वो संक्रमण प्रदेश संक्रमण है वो घटते चला जाएगा या बढ़ते चला जाएगा। ये संक्रमण करने वाला कौन जीव है हमने देखा था ना, देखो स्वामित्व निकालना, उसमें तो जघन्य उत्कृष्ट की बात नहीं है, लगातार होए तो काल तक यानी असंख्यात वर्षों तक वो घटते हुए प्रमाण में करता जाएगा। अवस्थित का हम पढ़ रहे थे, अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय, यानी पहले जितना घटा या बढ़ा फिर दूसरे समय में उतना ही रहा, तो एक समय अवस्थित का काल कहेंगे। और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है, यानी अवस्थित अधिक समय तक नहीं होता है, बाकी अल्पतर या भुजाकार असंख्यात वर्षों तक हो सकता है। इसी प्रकार शेष चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और पांच अंतराय प्रकृतियों के संबंध में कहना चाहिए। साता वेदनीय के भुजाकार संक्रामक का काल कितना है? वह जघन्य से एक समय व उत्कर्ष से एक समय कम आवली प्रमाण है। भुजाकार कहेंगे तो पहला वाला समय के बाद उसको भुजाकार कहना शुरू करेंगे तो आवली काल तक की बात है। उसके अल्पतर संक्रामक का काल कितना है? वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। असाता वेदनीय के भुजाकार और अल्पतर संक्रामकों का काल कितना है? वह जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। वो डबल तो हुआ है, अंत करना उसका। मिथ्यात्व के भुजाकार भुजाकर हुआ भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त अथवा एक समय कम आवली मात्र है। मिथ्यात्व का संक्रमण कहाँ होगा? मिथ्यात्व में हमने देखा था एकमात्र अधप प्रवृत्त संक्रमण ही होता है और वो मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होता। यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं होता, ऊपर के गुणस्थानों में होता है। जैसे प्रथमोपशम काल समयत्व के काल में शुरू में नहीं, उसमें हमने ये देखा था ना, उसमें मिथ्यात्व प्रकृति में अधप प्रवृत्त छोड़कर बाकी होते हैं ना, ऐसा देखा था ना। एक में तीन होते हैं, तीन संक्रमण होते हैं मिथ्यात्व में। एक तो गुण संक्रमण होता है, एक विद्यात संक्रमण होता है और फिर क्षपक में सर्व संक्रमण होगा। निकालो ग्रुप हमने कितना लिया था, वो एक दो तीन चार पांचवा ग्रुप, एक प्रकृति वाला मिथ्यात्व का। हाँ 415 विद्यात गुण संक्रम और सर्व संक्रम। हमेशा रूल क्या था, जहां बंद होता है वहां अध प्रवृत्त संक्रमण होता है, परंतु मिथ्यात्व में ये अध प्रवृत्त संक्रमण नहीं होता है। मैंने अभी जरा अलग से कुछ बताया। तो जब प्रथमोपशम होता है तब गुण संक्रमण होता है, प्रथमोपशम के काल में ही विद्या संक्रमण भी शुरू हो जाता है और वेदक सम्यक्त के काल में विद्या संक्रमण होता है। और गुण संक्रमण कब होता है? जब क्षपणा है तब भी गुण संक्रमण होता है और बाद में लास्ट जो फाली खिरेगी वो सर्व संक्रमण होता है। अब यहां जो बात बताए ना भुजाकार, तो भुजाकार ने प्रति समय वो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा परमाणु संक्रमित होते हैं, तो गुण संक्रमण के काल में भी उसको भुजाकार कह सकते हैं। तो ये अंतर्मूर्त लगातार हो जाएगा, उत्कर्ष से अंतर्मूर्त, अथवा ये एक समय कम आवली मात्र वो काल बताया उन्होंने, एक आवली तक होता है इस तरह से। अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 66 सागरोपम मात्र है। ये विद्यात संक्रमण होता है और वेदक सम्यक्त के काल में हर समय चलता रहता है। तो अल्पतर क्यों कहा? क्योंकि मिथ्यात्व के परमाणु तो परिणमित होते रहते हैं, तो उसका प्रमाण घटता चला जाता है। अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से उधर दिख रहा है एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। अब सम्यक्त प्रकृति के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर मुहूर्त मात्र है। सम्यक प्रकृति का संक्रामक कब कहलाएगा? वो मिथ्यात्व में आवे तब, मिथ्यात्व में एक अंतर्मूर्त तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, बाद में उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है अंतर्मूर्त के बाद, तो वहां उसका लगातार चलता है उद्वेलना वाला संक्रमण होता है, और अंतिम जो कांडक रहता है वहां गुण संक्रमण और फिर सर्व संक्रमण। इसलिए यहां कहते हैं भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है, अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से पल्यपम के असंख्यात्वे भाग मात्र है। ये पल्य के असंख्यात्वे भाग मात्र उसका उद्वेलना संक्रमण होता है और वो घटता चला जाता है प्रदेशों का प्रमाण, गुण संक्रमण में ही वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भुजाकार में वो अंतर्मूर्त कहा, असंख्यात गुना होता है ना वहां पर। अल्पतर हो गया, उसका अवस्थित संक्रमण नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। सम्यक्त के काल में उसका जो संक्रमण होता चला जाता है, और जो भुजाकार में जो उत्कर्ष से अंतर्मूर्त बताया है वो क्षपणा के काल में होता है, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा। अनंतानुबंधी चतुष्टय के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्यपम के असंख्यात्वे भाग मात्र है। अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। ये वेदक सम्यक्तों के काल में लिया। अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। 12 कषाय भय और जुगुप्सा की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। हमने मति ज्ञानावरण में अभी देखा ना, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्यपम का असंख्यात अभाव, भुजाकार के लिए भी और अल्पतर के लिए भी। अब 456 पृष्ठ पर आते हैं। हास्य रति अरति शोक स्त्री वेद और नपुसक वेद, इनके भुजाकार व अल्पतर संक्रामकों का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। इनका अवस्थित संक्रम नहीं होता। विशेष इतना है कि स्त्री वेद के अल्पतर संक्रामक का काल उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है, तथा नपुसक वेद के अल्पतर संक्रामक का उत्कृष्ट काल कर रह गया वहां पर, तीन पल्योपमों से सहित 266 सागरोपम मात्र है। हमने देखा ना, तीन पल्योपम वाला भोग भूमिका जी, अंत में उसने समय तो प्राप्त किया फिर देव में गया, ऐसा ऐसा जीव लेना वहां पर। पुरुष वेद की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। नरक गति नाम कर्म के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 266 सागरोपम मात्र है। ये क्योंकि अभी नया तो बंद नहीं होता है और वो फिर घटते चला जाता है, अवस्थित संक्रम उसका नहीं होता। तिर्यंच गति नाम कर्म के भुजाकार संक्रामक का यहाँ भी क डालना। जघन्य वो उत्कृष्ट काल हेतु और उपदेश से अंतर्मूर्त मात्र है। हेतु इन्हें हम लॉजिक से देख सकते हैं और उपदेश भी ऐसा ही है कि उसका अंतर्मूर्त मात्र है। भुजाकार तिर्यंच गति नाम कर्म के अल्पतर संक्रम का काल, ये संक्रम का और संक्राम का लिखा है, कहीं संक्रामक का लिखा है, हाँ संक्राम गलत है। संक्रमोन्नति किसकी चल रही है, तिर्यंच गति के अल्पतर का संक्रम का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से साधिक 163 सागरोपम मात्र है। ये याद है कल कैसे उन्होंने घटित किया था, देखो ये निकालो, विशेषार्थ में बताया था उन्होंने, पेज नंबर कौन सा था, 440। हाँ विशेषार्थ में तीसरी लाइन, वही इस प्रकार से वहां लिया था, नहीं वो तो 150 ही घटित कर रहे थे, 163 को तिर्यंच गति के उसके पहले पेज पर बताया था ना कि नहीं, देखो 437 437 पेज पर तिर्यंच गति और उद्योत की बात वहां बताई है ना, वहां 163 सागर कैसे होते उसको बताया है, देखते जरा देखो नीचे का पैराग्राफ, जो जघन्य सत्कर्म के साथ यानी तिर्यंच गति नाम कर्म के जो सत्ता में कर्म है वो मिनिमम के साथ मनुष्य गति को प्राप्त होकर तीन पल्यपम प्रमाण आयु वालों में उत्पन्न हुआ है, वहां अंतर्मूर्त आयु के शेष रहने पर सम्यक्त को प्राप्त करता है, यानी जब तक वहां है तिर्यंच गति नहीं बांध रहा है तो सम्यक्त प्राप्त कर पल्योपम प्रमाण आयु वाला देव हुआ, यानी पल्य की आयु वाला देव है, अभी वो सम्यक्त के साथ उत्पन्न हुआ है तो वहां भी वो तिर्यंच गति नहीं बांधेगा। तत्पश्चात अप्रतीत सम्यक्त के साथ मनुष्य गति को प्राप्त हुआ, फिर से भी अप्रतिपतित सम्यक्त के साथ 31 सागरोपम प्रमाण आयु वाला देव हुआ, तो 31 में उत्पन्न किया और वहां जाने के बाद उसको अंतर्मूर्त में मिथ्यात्व में गया, परंतु वो 31 सागर वाला है वहां भी भले मिथ्यात्व है पर तिर्यंच गति नहीं बांधेगा। उसके बाद देव गति समाप्त होने के पहले पहले फिर सम्यक्त को प्राप्त हुआ और बाद में 266 सागरोपम काल तक वो सम्यक्त का प्राप्त, तो 266 यानी 132 हुए और ये बीच वाले 31 सागर वाली जो है 163 हुए और उसमें वो एक पल्य देव का और तीन पल्य बोगभूमि का ये भी उसमें जोड़ सकते, तो चार पल्य अधिक 163 सागर, ये हमने वहां 437-38 पर देखा था। अभी हमने देखा था ना साधिक में उतना लेना चार पल्य, वो 37 पर पढ़ के आए ना, अब आगे बढ़ेंगे। अवस्थित संक्रम उसका नहीं होता, मनुष्य गति नाम कर्म के भुजाकार संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्यपम के असंख्यात वे भाग मात्र है, युक्ति से वह एक समय कम 33 सागरोपम मात्र है। ये जो नीचे नारकी जो है वो मनुष्य गति का बंध, हाँ एक समय क्योंकि अल्पतर कहना है ना, पहले समय के बाद दूसरे समय से वो बढ़ा है क्या घटा है वो हम कंपेयर करने के लिए पहला समय तो छोड़ना पड़ेगा उसको, भुजाकार संक्रम का काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से पल्लोपम का, और वो युक्ति से यानी अभी हम अनुमान अगर लगाते हैं तो एक समय कम 33 साल, तब तक वो मनुष्य गति नहीं बांध रहा है। सातवें नरक का नारक, देखो मनुष्य गति का वो ये निकालना। अभी हमने जो तिर्यंच गति की बात हमने देखी थी ना, 437 में हमने देखा था मनुष्य गति का, ये जघन्य संक्रम देखा है जघन्य की बात। तो जघन्य के बाद जब उसका बढ़ेगा तब देखना पड़ेगा, फिर से बांध कर। भुजाकार का उन्होंने इतना स्वामी नहीं बताया ना, भुजाकार का, मनुष्य गति के भुजाकार का स्वामी बताया। कोई अन्यतर जीव देखा था, और गति में काल नहीं घटित होता है। बाकी हमने जघन्य और विषय यानी उत्कृष्ट को देखा था अलग अलग। मनुष्य गति का उत्कृष्ट देखो किसके होता है, उत्कृष्ट प्रदेश मनुष्य गति 428 पर है। देखो इसी से पता चलेगा मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी का मिला। तीसरी लाइन, उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी में प्रारंभिक अंतर्मूर्त में सम्यक्त को प्राप्त होकर सर्व निरुद्ध अर्थात आयु में अंतर्मूर्त शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, और फिर वहां से निकलकर तिर्यंचों में होता है। अभी वो वहां से निकलकर तिर्यंचों में उसको अगर छोड़ भी देते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि का देव मनुष्य गति बांधेगा। संक्रमण उसका कैसे लेना उसमें, देखो ये और देखा हमने, ये प्रकृतियों के ग्रुप देखे थे ना, उसमें मनुष्य गति को देखना। मनुष्य गति में कौन कौन से होते हैं संक्रमण, उसकी बात हम निकालेंगे। ये उद्वेलना वाला है ना, वो 12 वाला ग्रुप होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वा ग्रुप उद्वेलना वाली प्रकृति। वो पेज नंबर है 418 या 17 होगा, 17 में। हाँ मनुष्य गति देखो वहां पढ़ते हैं 417 पृष्ठ पर। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी का मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्य दृष्टि तक अधः प्रवृत्त संक्रम होता है, क्योंकि वहां इनका बंध पाया जाता है। आगे भी बताएं जहां बंध नहीं होता उसकी क्या बात है। संयता संयत से लेकर अप्रमत्त संयत तक उनका विद्या संक्रमण होता है, क्योंकि वहां बंध नहीं पाया जाता। असंख्यात वर्षायुष्क तिर्यंच और मनुष्यों में उसका विद्या संक्रमण होता है, क्योंकि उनका बंध नहीं है। तेज कायिक और वायु कायिकों में द्विचरम उसकी बात है। यहाँ ऐसा भी ले सकते हैं कि सातवें नरक का नारकी अगर मिथ्या दृष्टि है तो बंध नहीं होता है, तो वहां विद्या संक्रमण पाया जाएगा, और उसको सम्यक्त करते हैं तो जब तक सम्यक्त का है तब तक। परंतु ऐसी कोई यहाँ अपेक्षा नहीं ली उन्होंने, यानी मिथ्या दृष्टि नारकी है सातवें नरक का, तो उसका विद्या संक्रमण चलता रहेगा। भुजाकार में लिया इसलिए जरा आगे बढ़ते हैं। उसके अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय मात्र है। उत्कर्ष से व पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग तथा हेतु से साधिक तीन पल्ल्य 457। उत्कर्ष से पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग ये समझ में आता है? हाँ, उद्वेलना होती है नहीं। हेतु से साधिक तीन पल्ल्य प्रमाण है। ये देवायु बांध रहा है ना, वो तीन पल्ले वाला है। इस तरह से अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। देवगति नाम कर्म के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय है। उत्कर्ष से वह पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग तथा हेतु से साधिक तीन पल्ल्योपम प्रमाण है। बंध की अपेक्षा लिया तो मनुष्य में भी तीन पल्ल्य, तो तीन पल्ल्य क्यों? हाँ, तो तीन पल्ले क्यों लिया? साधिक तीन पल्ले लिया मनुष्य गति के लिए, साधिक तीन पल्ल्योपम लिया, और देव गति के लिए भी साधिक तीन पल्ल्योपम, यानी हेतु से बात जो सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, पर कौन सी? हाँ, संक्रमण का टाइप अलग होगा क्योंकि देवगति का बंध कर रहा है, तो जहां बंध होता है वहां तो अदप प्रवृत्त संक्रमण होता है, और जहां बंध नहीं है वहां विद्या संक्रमण होता है। वो भी भुजाकार रूप से होगा। जो पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग कहा वो तो उद्वेलना की बात, और जो हेतु से बात की है वो तो लगातार उसका बंद होता है उसकी अपेक्षा से लिया। अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय मात्र है। उत्कर्ष से वह पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग तथा हेतु से साधिक 33 सागरोपम मात्र है। अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। अब औदारिक शरीर के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय मात्र है। उत्कर्ष से व पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग तथा हेतु से एक समय कम 33 सागरोपम मात्र है। अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय मात्र है और उत्कर्ष से वह पल्ल्योपम के असंख्यात विभाग, पहले भाग नहीं चाहिए, पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग तथा हेतु से साधिक तीन पल्ल्योपम मात्र है। देखो, अवतारिक शरीर में पल्ल्य का असंख्यात भाग, यहां भी उसका बंधन नहीं है, वैकिरिक शरीर को बांधेगा ना तीन पल, नहीं नहीं वो पल्ल्य का असंख्यात भाग की बात चल रही है आपकी। हाँ, भुजाकार संक्रामक अल्पतर संक्रामक, ये तो सब में ये उतना ही लिया था ना, उसमें किसी बहु की बात नहीं। देखो, मति ज्ञानावरण में भी ऐसा ही लिया था। निकालना 454 पर, यानी वहां किसी गति वगैरह की बात नहीं है। देखो, मति ज्ञानावरण के भुजाकार एक समय कम, यानी कम से कम एक समय, अधिक से अधिक पल्ले का संख्या तो था, अल्पतर का भी वैसा ही लिया था। अब यहाँ अल्पतर में उत्कर्ष में तो वैसा ही लिया और हेतु से अलग किया, और अल्पतर में भी एक समय से लेकर पल्ले के असंख्यात विभाग तक लिया, यानी यहाँ कोई अन्य कोई वो बात ही नहीं है, यानी लगातार होता रहे तो पल्ले के असंख्यात विभाग तक होता है, इतना ही लेना उसका। अवस्थित संक्रामक का काल 457 पर आते थे, जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय मात्र है। वैकिरेक शरीर की प्ररूपणा देवगति की समान है, डबल न हुआ। सब ध्रुवबंधी नाम प्रकृतियों की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। ये ध्रुवबंधी नाम कर्म कौन से है? अश्विन भाई को मालूम है क्या कहते हैं? हाँ, ध्रुवबंदी नहीं, वो 47 में वो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, उसमें तो हमने अकेले नाम कर्म की चाहिए थी। वो जो आपने 47 बताया ना ध्रुवबंदी प्रकृति, वो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, मिथ्यात्व सोला कषाय भय जुगुप्सा है, तेजस कारमाण है, अग्र लघु उपघात परघात उच्छ्वास है। हाँ, उच्छ्वास को नहीं लेना, नहीं उच्छ्वास नहीं, अग्र लघु उपघात लेना है। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण और निर्माण। अब यहाँ नाम कर्म में हमने देखा ना स्थिर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ लिया था ना उसमें। हाँ, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ दोनों को चार, वो चार तो वो हो जाती है, आपके पास है ना वो नाम कर्म की ध्रुवबंदी प्रकृतियों। हाँ, देखो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ, फिर वो स्पर्श रस गंध वर्ण अगुर लघु उपघात निर्माण एक है, और हमने ध्रुव दही की बात और उसके साथ मिक्स किया मैंने। ये ध्रुवबंदी तो अभी हमने जो देखी थी, ध्रुवबंदी अन्य प्रकृतियों में जो उसकी आई थी उसी को लेना है। मैंने स्थिर अस्थिर जो कहा है वो ध्रुवदयी की बात है, वो ध्रुवदयी में आई। 12 प्रकृति मुझे जो याद थी वो ध्रुवदयी वाली है, और ध्रुवबंदी जो हमने 47 में नाम कर्म की गिनाई थी, तेजस कारमाण स्पर्श रस गंध वर्ण अगुर लघु उपघात और निर्माण। हाँ देखो, हाँ, तेजस कारमाण स्पर्शादिचार, हाँ क्या वर्णादिचार कैसे, स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार हुए, अग्र लघु उपघात और निर्माण, 9 हो जाएगी नहीं, ये 2 4 7 3 9 9 9 है। ये ध्रुवबंधी नाम कर्म है। मति ज्ञानावरण में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक पल्ले का असंख्या तो अभा, वो प्ररूपणा इसमें भी होगी। 12 ध्रुवोदयी में हमने लिए, ये ध्रुवबंदी की बात कर रहे हैं। हमने टोटल तो 47 देखी थी, उसमें तो ये ज्ञानावरण आदि वो घाती कर्म की होती है ना। देखो आयु, वेदनीय और गोत्र, इसकी तो ध्रुवबंदी नहीं है, नाम में कुछ तो ध्रुवबंदी है, तो बाकी जो है वो ऑप्शनल में होती है ना, प्रतिपक्ष होते, प्रतिपक्ष सहित वाले हैं, और ये जो है वो हमेशा वो बनती ही है जब तक उसकी बंध विच्छित। हाँ, वेदनीय में आयदर साता या असाता, जब तक विच्छित नहीं होती तो ऑप्शनल ही बंधेगी। नाम कर्म में भी जाति में से कोई भी एक जाति कर्म बंधेगा, कोई गति बंधेगी, उसमें भी उस ग्रुप में से कोई एक बंधेगी, इसलिए उसको वो प्रतिपक्षी वाली कहेंगे। हमने ये जो देखी थी अभी, जो ध्रुवबंधी प्रकृति है, टोटल की बात करेंगे, ज्ञानावरण दर्शनावरण वगैरह जो देखा था, वो तो हर समय बनती ही है जब तक विच्छित नहीं होती। उसमें ऑप्शनल कहाँ है? घाती कर्मों में हास्यरति या शोकरति, और तीन वेद में से कोई एक वेद, वहां तो ऑप्शन है। भय जुगुप्सा तो निरंतर बनती है, उदय में ऑप्शन है। और अभी ये जो नाम कर्म में जो है, नाम कर्म में ये जो नव है वो तो ध्रुवबंधी है, और बाकी में गति में से बंधेगी, जाति में से बनेगी, सहनन बंधे या नहीं बंधे, संस्थान को एक बंधेगा, इस तरह से उसमें तो ऑप्शंस है। स्पर्श रस गंध वर्ण में यह ऑप्शन है, या प्रशस्त स्पर्श रस आदि बंधे या अप्रशस्त, परंतु संख्या तो उतनी होगी उसमें भी। अब आगे पढ़ेंगे। समचतुरस्र संस्थान के भुजाकार और अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय मात्र है। उत्कर्षतः वह उपदेश से पल्ल्योपम के असंख्यातवे भाग तथा हेतु से भुजाकार संक्रामक व अल्पतर संक्रामक, इस की बिंदी स्पष्ट करना, दोनों ही काल साधिक 33 सागरोपम मात्र है। अवस्थित संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से संख्यात समय है। ये बहुतांशी कर्मों में तो उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात भाग कहा है, और हेतु से अलग अलग उन्होंने बताया है। वज्रषभ वज्र नाराज सहनन की प्ररूपणा मनुष्य गति के समान है। अब आगे चार अनुपूर्वी प्रकृतियों की यह प्ररूपणा अपनी अपनी गति के समान है, यानी मनुष्य गति नाम कर्म की जो प्ररूपणा है वही गत्यानुपूर्वी के लिए है। शेष पांच संस्थान, पांच सहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहार गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अयश कीर्ति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनके भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। उनके अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय है, उत्कर्ष से वह स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और अयश कीर्ति का अंतर्मूर्त, उद्योत का तीन पल्ल्यों से अधिक 163 सागरोपम, हमने भी तिर्यंच गति के साथ उसको देखा था उद्योत वाले, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण शरीर का 185 सागरोपम, ये 185 अभी हमने 440 पृष्ठ पर घटित करके दिखाया था उन्होंने विशेषार्थ में, तथा पांच संस्थान, पांच सहनन, अप्रशस्त विहार गति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय का तीन पल्ल्योपमों से अधिक 266 सागरोपम मात्र है। उनका अवस्थित संक्रम नहीं होता। ये तीन पल्ल्योपम इसलिए लिए थे, वहां ये इनकी प्रकृतियां नहीं बनती है इसलिए, क्योंकि वहां तो देवगति बांधते हैं ना, तो देवगति के साथ कोई भी ये नीचे के पांच संस्थान नहीं बनते हैं, समचतुर्थ संस्थान बनता है, कोई भी संस्थान नहीं बनता है, ये सॉरी सहनन कोई भी नहीं बनता है, और प्रशस्त विहार गति बनती है, दुर्भग, दुस्वर, अनादे वगैरह नहीं बनते, इसलिए उसको लिया। परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहार गति, त्रस्त, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, सुभग, आदेय, यश कीर्ति और सुस्वर की प्ररूपणा समचतुरस्र संस्थान के समान है। ग हुआ उसके समान है। हमने देखा था ये तो आठवें गुणस्थान तक उसमें से बहुत सारे बनती है, यश कीर्ति तो अधिक आगे भी बनती है, तो उसका अधप्रवृत्त संक्रमण तो वहां तक चलेगा, और बाद में हमने देखा था कि दसवें तक उसका आगे भी है संक्रमण। उच्च गोत्र के भुजाकार संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से श के ऊपर रफार आवली मात्र है। उसके अल्पतर संक्रामक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से सादिक 33 सागरोपम मात्र है। उच्च गोत्र की उद्वेलना के अंतिम स्थिति कांडक में ये उच्च गोत्र है, वो उद्वेलना वाली प्रकृति है, तो द्विचरम स्थिति कांडक तक उसका कौन सा संक्रमण है? हाँ, उद्वेलना संक्रमण, उद्वेलना वाला संक्रमण। हाँ, और बाद में गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, और अंतिम स्थिति कांडक में ये गुण संक्रमण है, इसलिए वहां भुजाकार लिया। उसका संक्रम का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, क्योंकि एक स्थिति कांडक होने में अंतर्मूर्त लगता है, इसका अवस्थित संक्रम नहीं है। नीज गोत्र के भुजाकार संक्रम का काल क्षपणा व उपशामना के बिना एक आवली तथा क्षपणा व उपशामना के साथ अंतर्मूर्त मात्र है, यानी अन्य अवस्थाओं में एक आवली और क्षपणा में और उपशमना में एक अंतर्मूर्त। अल्पतर संक्रम का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से साधिक 66 सागरोपम मात्र है, अवस्थित संक्रम नहीं है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपणा समाप्त हुई। एक जीव की अपेक्षा अंतर एवं नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय काल और अंतर का कथन स्वामित्व से तथा एक जीव की अपेक्षा काल से भी सिद्ध करके कहना चाहिए। अब अल्प बहुत्व की प्ररूपणा की जाती है। अल्प बहुत्व किसमें करेंगे? वक्तव्य वाले थोड़े हैं क्या, भुजाकार ज्यादा है क्या, अल्पतर कैसे, उसमें अल्प बहुत्व लगाएंगे। मति ज्ञानावरण के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, अवस्थित संक्रामक अनंत गुणे हैं, अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और भुजाकार संक्रामक संख्यात गुणे हैं, यानी उससे भी संख्यात गुणे इससे, यानी मैक्सिमम तो भुजाकार संक्रामक है। संक्रामक मेरे ख्याल से वो श्रेणी में बताया था ना वक्तव्य, अभी हमने पढ़ा था ना भुजाकार अल्पतर, वहाँ ये स्वामित्व की बात, भुजाकार के स्वामित्व की बात पढ़ी थी। हाँ, ये प्रतिपत्यमान वगैरह 453 पृष्ठ पर वक्तव्य संक्रामक कौन होता है, नीचे से दूसरी लाइन 453 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन। देखो, उसका संक्रामक परिपतमान अर्थात उपशम श्रेणी से गिरने वाला अन्यतर उपशांत कषाय होता है, कोई भी उपशांत कषाय गिरने, क्योंकि हमने देखा था ना उसका संक्रमण कहाँ तक है। हाँ, कौन सा वाला है? पहले 39 का ग्रुप जो है, पहला ग्रुप। हाँ, तो उसका हमेशा होता है, कहाँ तक होता है संक्रमण? 10वें तक ही होता है। निकालो, ये हमने जो वो ग्रुप देखे थे ना, पहला ग्रुप 410 पृष्ठ, ये जो पांच ज्ञानावरण आदि सबको लिया था, नीचे से दूसरी लाइन में लिखा है, इन 39 प्रकृतियों का एक अधप प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। और अभी वो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का कहां से कहां तक, मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय तक बंद ही है, इसलिए वहां अधप प्रवृत्त संक्रमण ही होता है। बंद विच्छित्ति के हो जाने पर उनका संक्रम नहीं होता। बंद कहां तक है? 10वें तक, तो 11वें में उसका संक्रमण नहीं होगा। हाँ, ये बात यहां 410 और शेष ये 459 पर आना। शेष चार ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और पांच अंतराय प्रकृतियों का यह अल्प बहुत्व मति ज्ञानावरण के समान है, उसमें भी यही रूल है ना। अब साता रसाता वेदनी के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। देखो अवक्तव्य एक ही समय में घटित होंगे, साता का असाता रूप करने लगे या असाता का साता, ये कंटिन्यूस साता 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 का होते होते जब असाता हो जाएगा तो असाता का अवक्तव्य कहेंगे, कंटिन्यूस असाता का होते होते जब साता का हो जाएगा तो अवक्तव्य एक समय में घटित होगा, परंतु लगातार साता या लगातार असाता का होने का वो जो अंतर्मूर्त आवली है जो कुछ है उतना, इसलिए वो असंख्यात गुणा हो जाएगा। तो अवक्तव्य कम बताए और भुजाकार असंख्यात गुणे, अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं, क्योंकि एक आवली में संचित भुजाकार संक्रामक जीवों की अपेक्षा अंतर्मूर्त संचित अल्पतर संक्रामक, ये ख्याल में आता है। अल्प जब हम अवक्तव्य कहते हैं तो एक समय ही घटित होगा, भुजाकार है वो आवली काल तक है, इसलिए आवली काल में कितने समय है उससे गुणा करना तो असंख्यात गुणा हो जाता है, और अल्पतर है उसका अंतर्मूर्त काल है, यानी संख्यात आवली हो गया, संख्यात आवली को हम अंतर्मूर्त कहते हैं, इसलिए वो असंख्यात गुणा हो जाता है। संख्यात गुणत्व की सिद्धि निर्बाध पाई जाती है, यानी वो सिद्ध हो जाता है बात। 16 कषाय भय और जुगुप्सा की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। हास्य और रति के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। भुजाकार संक्रामक अनंत गुणे हैं, अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं, इसी प्रकार स्त्रीवेद के संबंध में कहना चाहिए। अरति व शोक के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, अल्पतर संक्रामक अनंत गुणे हैं, भुजाकार संक्रामक संख्यात गुणे हैं, इसी प्रकार नपुसक वेद के संबंध में कहना चाहिए। पुरुष वेद के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, अवस्थित संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, भुजाकार संक्रामक अनंत गुणे हैं और अल्पतर संक्रामक संख्यात गुणे हैं। मिथ्यात्व के अवस्थित संक्रामक स्तोक है, अवक्तव्य संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। सम्यक्त प्रकृति के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। सम्यक मिथ्यात्व की प्ररूपणा सम्यक्त प्रकृति के समान है। अब नरक गति नाम कर्म के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। अब अवक्तव्य कब कहेंगे? देखो जब उद्वेलना हो गई है फिर नया बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद आवली के बाद उसका संक्रामक चालू हो जाएगा, तब उसको कहेंगे अवक्तव्य संक्रामक। भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। तिर्यंच गति नाम कर्म के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। अभी तिर्यंच गति में कैसे घटित करना? तिर्यंच गति में अवक्तव्य हमने अभी स्वामित्व में देखना जाए। चार सौ चौपन के आसपास में होगा। इसकी कोई बात ही नहीं लिखी उन्होंने। चार काल होगा ना वो। अल्पतर नहीं होता है। अवक्तव्य उसकी बात लिखी नहीं है। अकेला वो तीरंज गति का स्वामी देखना अभी अपन। देखो बंद हुआ है तो सत्ता में पड़ा है तो उसका संक्रमण कोई ना कोई चलेगा ना। हाँ गति तो कोई ना कोई निरंतर बनती है। ये गति हमने कौन से ग्रुप में ली थी? पहले जो हमने ग्रुप देखे थे ना। ये इसमें है दूसरा ग्रुप में। हाँ 412 वाला में नहीं। तीरंज गति उद्वेलना वाली नहीं। उद्वेलना बिना चार संक्रमण वाली है। वो दूसरे ग्रुप में 411 के बाद वहां शुरू हुआ है। 12 पर उसका नाम आया है। वहां देखो 412 पृष्ठ पर पहली लाइन पढ़ती हूँ। स्त्यान वृद्धि त्रय स्त्रीवे तिर्यगति तिर्यगत्यान पूर्वी उद्योतन अनंतानुबंधी चतुष्क का कौन सा संक्रमण होता है उतनी बात बताइए। मिथ्या दृष्टि से लेकर सासाधन सम्यक दृष्टि तक अधप प्रवृत्त संक्रम होता है क्योंकि बंद है ना वहां पर। सम्यक मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयोग तक उनका विद्या संक्रमण होता है। समझ में आया मुझे। अपूर्व करण क्षपक के प्रथम समय से लेकर अपने अंतिम स्थिति कांड के बीच में उनका गुण संक्रमण होता है। अंतिम फाली का सर्व संक्रम होता है। तो इनका अवक्तव्य होगा ना जब श्रेणी से उपशम उपशम श्रेणी में होगा ना। तो यहाँ क्या लिखा देखो। अप्रमतक विद्या संक्रमण है और बाद में गुण संक्रमण होता है। वो तो क्षपक में सगर्व संक्रमण है। हाँ बंध का अभाव है तो विद्या संक्रमण सातवें तक ही होगा। अपूर्वकरण के बाद गुण संक्रमण होगा। क्षपक में सर्व संक्रमण है पर औपशमिक वाले को उपशांत कषाय में क्या है? गुण संक्रमण ही चालू है तो उसका अवक्तव्य कब होगा? ये प्रश्न है। अवक्तव्य उसका कब होगा? तीरंज गति का अवक्तव्य कब होगा? बंद है तभी भी होता है, नहीं बंद है तभी भी होता है। नरक गति में तो उद्वेलना के बाद हम कह सकते हैं उसका शुरू हो गया है ना। ख्याल में नहीं आया अपने। पढ़ेंगे आगे। ख्याल में आया तो उसकी फिर चर्चा करेंगे। देखो तीरंज गति के बाद फिर पढ़ते 460 पृष्ठ पर तीसरी लाइन दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन। तिर्यंज गति नाम कर्म के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है। अल्पतर संक्रामक अनंत गुणे हैं। भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। गुण है हुआ गुणे हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के अवस्थित संक्रामक स्तोक है। अवक्तव्य संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, भुजाकार संक्रामक अनंत गुणे हैं, अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। देवगति नाम कर्म के अवस्थित संक्रामक स्तोक है, अवक्तव्य संक्रामक असंख्यात गुणे हैं, भुजाकार संक्रामक असंख्यात गुणे हैं और अल्पतर संक्रामक असंख्यात गुणे हैं। औदारिक तेजस और कार्मण शरीरों के प्रकृत अल्पभूतव की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। सब ध्रुवबंदी नाम प्रकृतियों की यह प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। प्रथम संस्थान और प्रथम सहनन की प्ररूपणा मनुष्य गति के समान है। चार संस्थानों और चार सहननों के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, भुजाकार संक्रामक अनंत गुणे हैं, अल्पतर संक्रामक का और उल्टा सुलटा हुआ संक्रामक संख्यात गुणे हैं, कुंड संस्थान और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन के अवक्तव्य संक्रामक स्तोक है, अल्पतर संक्रामक अनंत गुणे हैं, भुजाकार संक्रामक संख्यात गुणे हैं, नीच और उच्च गोत्र की प्ररूपणा साता असाता वेदनी के समान है। इस प्रकार भुजाकार संक्रम समाप्त हुआ। हाँ, कोई ना कोई होता है ना, संक्रमण तो चलता ही रहता है, कभी कभी रुकते तो उसके लिए तो संक्रमण, इसलिए अवक्तव्य कहे, जहां संक्रमण नहीं है। तो जहां नहीं होता और फिर होता है तो यहां अवक्तव्य कहे। जिसमें जिसमें अवक्तव्य होता है ना, तो वहां पर बीच में हाँ नहीं होता था फिर शुरू हुआ, ऐसा ही लिया है। उसमें ऐसा लिया ना, अपने अपने जब तक तीरंज गति में है तो तीरंज गति का संक्रामक होगा, क्यों नहीं होगा ना। तीरंज गति का उदय हो रहा है, हाँ बंद भी होता है, तो वहां संक्रमण कैसे लेना। बंद है वहां अधप्रवृत्त संक्रमण बताया ही है ना, घोटाला होता है कभी कभी उदय और बंद में, बहुत घोटाला होता है। हाँ यानी वो उसका प्रदेश संक्रम कभी नहीं होता, कब नहीं होता वो बात ख्याल में नहीं आती है। ये उद्वेलना वाली प्रकृतियों में तो ख्याल में आता है, बिना उद्वेला नहीं। हाँ वो हमें पता नहीं है, अपेक्षा कौन सी बताई वो पता नहीं है। जैसे वहां उसकी उदीरणा है जो उसका उदय है, परंतु अन्य प्रकृति रूप जिसका उदय है वह अन्य प्रकृति रूप होती है कि नहीं होती है, ऐसा भी वहां है ना, उदय वाली प्रकृति। अब इसमें जो है पदनिक्षेप, उत्कृष्ट वृद्धि या जघन्य वृद्धि उसकी बात करेंगे। यहां पदनिक्षेप में स्वामित्व की प्ररूपणा करते हैं, वह इस प्रकार है। मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, यानी वो भुजाकार तो ठीक है, परंतु अधिक से अधिक वृद्धि कहां पर होगी। जो गुणित कर्मांशिक जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ है, पश्चात उस वृद्धि से वृद्धिंगत होकर आवली अतिक्रांत उसका तथा पूर्व कर्म का भी संक्रम कर रहा है, उस सातवीं पृथ्वी के नारकी के मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। यानी वो उत्कृष्ट वृद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे बताया ना हमने, गुणित कर्मांशिक है और फिर आवली के बाद वो संक्रमण करता है उसका, और नए बंधे हुए का भी और पूर्व की सत्ता का भी। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक सर्वोत्कृष्ट कर्म के साथ क्षपणा करता हुआ, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में वर्तमान है, उसके मति ज्ञानावरण की उत्कृष्ट हानि होती है। उसका उत्कृष्ट अवस्थान कहां पर होता है? ये अधप्रवृत्त संक्रमण है ना, इसमें गुण संक्रमण से उसकी वृद्धि होती जाती है, समझो। अब यहां वो जो उत्कृष्ट वृद्धि बताई वो गुणित कर्मांशिक के लिए, जिसने उत्कृष्ट बंध किया था उसकी बात की थी। उत्कृष्ट अवस्थान कहां पर होता है? उसका उत्कृष्ट अवस्थान वृद्धि में होता है, यानी उत्कृष्ट वृद्धि के बाद उतना ही रहना, उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। शेष चार ज्ञानावरण दर्शना, शेष चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अंतराय की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। संक्रमण, संक्रमण में ही हानि, पहले जितना संक्रमण होता था तो उसमें बहुत घट गया, एक समय में बहुत घट गया, तो कहां पर होता है? सूक्ष्म सांप्राय में, अंतिम समय में, यानी द्विचरम समय से चरम समय में, उसकी उत्कृष्ट हानि होगी। और वो भी क्षपणा वाला गया। गुण संक्रमण गुण श्रेणी है, गुण श्रेणी निर्जरा है, गुण संक्रमण उसमें होता ही नहीं है। पहले 39 प्रकृति जो है अध प्रवृत्त ही सूक्ष्म सांप्राय तक चलता है, उसका अपना निर्जरा है, वो गुण श्रेणी रूप से चल रही है। यहां संक्रमण की बात हो रही है, अन्य प्रकृति रूप होने की बात चल रही है। अपने अपने रूप से वो खिर रहा है, उदीरणा भले उसकी मैक्सिमम है परंतु प्रदेश संक्रमण मिनिमम है, ये बात बताना चाहते हैं। स्वरूप से खिरते चला जाता है, पर रूप से बहुत कम होते हैं। नीचे का पड़ेगा, निद्रा और प्रचला की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? वह गुणित कर्मांशिक अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक के होती है। उनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक जीव प्रथमतः उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होता हुआ अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होकर मरण को प्राप्त हुआ है, उसके प्रथम समयवर्ती देव होने पर उनकी उत्कृष्ट हानि होती है। उनके उत्कृष्ट अवस्थान की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के अवस्थान के समान है। स्त्यान वृद्धि की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? वह सर्वसंक्रम द्वारा संक्रांत करने वाले गुणित कर्मांशिक के होती है। ये सर्वसंक्रमण कहां पर होता है? उसकी क्षपणा कहां होती है? हाँ, नवे में, जहां 16 प्रकृतियों का क्षय होता है ना, स्थान वृद्धि त्रिय और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां। उनकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान की प्ररूपणा निद्रा के समान करना चाहिए। उत्कृष्ट हानि हमने देखी थी ना, अंतिम समय वृद्धि सूक्ष्म सांप्रायिक मरकर देव में जाता है वहां। आगे 462 पर साता वेदनी की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक कषायों को 3 बार उपशमा कर चौथे बार उपशमाता हुआ अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होकर मरण को प्राप्त हो देव हुआ है। उस आवली कालवर्ती तद्भवस्थ देव के उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। इसी के अनंतर काल में उनकी उत्कृष्ट हानि होती है, अवस्थान नहीं होता। एक आवली काल में वृद्धि होती है। हाँ, संक्रमण की बात है ना। गुणित का एक मिनट, वृद्धि की बात है। वृद्धि में वो भुजाकार रूप लेना उसमें। हाँ, भुजाकार रूप में वृद्धि कितनी होती है, पहले समय से अधिक ज्यादा हो जाएगी। संक्रमण की ही बात है, संक्रमण में ही भुजाकार, संक्रमण में भुजाकार यानी वृद्धि होना। मैक्सिमम वृद्धि कहाँ पर होती है? अन्य रूप यानी असतावेदनी रूप हो जाएगी। हाँ, असतावेदनी की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ हो, श्रेय करना उसको है, फीका है, अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक हुआ है, उसके उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। ये तो समझ में आता है ना। हाँ, ये असाता साता रूप हो रहे। उसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक उपशम श्रेणी पर, यहाँ भी श्रेय करना, श्रेय दिखता है, उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर सूक्ष्म सांप्रायिक होता हुआ अनंतर समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसके प्रथम समयवर्ती देव होने पर, ये प्रथम समय लिया, असाता वेदनी की उत्कृष्ट हानि होती है, अवस्थान उनका नहीं होता। ये तो साता असाता चेंज होते जाते हैं, उस अपेक्षा से यहाँ लिया है। यहाँ पहला समय लिया है और वहां आवली वाला लिया है। और फिर बाद में उसके हानि भी बताई है। मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सर्वसंक्रम द्वारा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व में संक्रांत कर रहा है, उसके मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। ये तो समझ में आवे ऐसी बात है। सम्यक, हाँ, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक प्रथम सम्यक्त्व को ग्रहण कर सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को गुणसंक्रम के द्वारा पूर्ण करके अनंतर काल में विद्यात संक्रम को प्राप्त हुआ है, उसके उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। देखो ये क्या कहते हैं, प्रथम सम्यक्त्व यानी प्रथम उपशम सम्यक्त्व। तो ये जो गुणसंक्रमण जो है, मिथ्यात्व का गुणसंक्रमण, गुणित प्रमाण में सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमने का जो उसका प्रोसेस है, उसको गुण संक्रमण कहेंगे। एक अंतर्मूर्त काल के पश्चात अभी उपशम सम्यक्त्व ही चालू है, तो उसको गुण संक्रम बदल कर विद्यात संक्रमण हो जाता है। पहले गुणित प्रमाण में असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, एकदम गुण संक्रम के अंतिम समय में कितने असंख्यात गुणा हुआ, और बाद में एकदम विद्यात संक्रमण हुआ, तो उसका वहां हानि बहुत है, उत्कृष्ट हानि बताएं। उसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक पूर्व आगत सम्यक्त्व के साथ उत्कृष्ट योग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त होकर, प्राप्त हुए, प्राप्त होकर अनंतर काल में जो समय प्रबद्ध है उससे विशेषाधिक योग स्थान में हो हुआ, योग स्थान में गिरता है, पश्चात जो अनंतर काल में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, उसके जब उत्कृष्ट वृद्धि आवली अतिक्रांत होती है, तब मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम वृद्धि होती है। मिथ्यात्व की बात चल रही है। अवस्थान की बात चल रही है, उत्कृष्ट अवस्थान, मिथ्यात्व में उत्कृष्ट अवस्थान की बात चल रही थी। देखो फिर पढ़ते हैं नीचे से तीसरी लाइन। गुणित कर्मांशिक पूर्वागत सम्यक्त्व के साथ, यानी सम्यक्त्व में से गिरकर वो आया है मिथ्यात्व में, उत्कृष्ट योग वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त होकर, यानी वो योग बढ़ा है तो समय प्रबद्ध बढ़ जाएगा। अनंतर काल में जो समय प्रबद्ध है उससे विशेष अधिक योग स्थान में गिरता है और बाद में वो सम्यक्त को प्राप्त हुआ है। और जब उस उत्कृष्ट वृद्धि आवली अतिक्रांत होती है, पहले उत्कृष्ट वृद्धि के साथ जो बांधा था उसमें जब आवली बीत जाती है, तब मिथ्यात्व की उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम वृद्धि होती है, उसी में उसका अनंतर काल में अवस्थान होता है। सम्यक्त्व प्रकृति की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो उत्कृष्ट सत्कर्म के साथ मिथ्यात्व को प्राप्त होकर पश्चात सबसे थोड़े उद्वेलन काल में सम्यक्त्व की उद्वेलना करता है उसके अंतिम स्थिति कांडक के अंतिम समय में उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। क्या कहना चाहते हैं? देखो सम्यक प्रकृति के प्रदेश संक्रमण कब होता है? सम्यक्त्व में तो नहीं होता है, जब वो मिथ्यात्व में आया तो मिथ्यात्व में एक अंतर्मूर्त काल तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, उसके बाद उद्वेलना संक्रमण होता है पल्ले के असंख्यात विभाग तक, परंतु वो भी छोटे में छोटे काल लेना। और जो अंतिम स्थिति अंतिम कांडक जो है उसमें गुण संक्रमण होता है और अंतिम समय में सर्व संक्रमण होता है। हाँ, गुण संक्रमण से सर्व संक्रमण होता है तब उसका उत्कृष्ट वृद्धि है, इसलिए वो उद्वेलना काल घटा दिया, उसकी उत्कृष्ट वो उत्कृष्ट दिखता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो उत्कृष्ट सत्कर्म के साथ मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है उस द्वितीय समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के, उसकी उत्कृष्ट हानि होती है, क्योंकि पहले समय में अधप्रवृत्त संक्रमण है, दूसरे समय में वो और घटते चला जाएगा, तो इसलिए उसको हानि कही। वहां पर अवस्थान उसका नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि और हानि की प्ररूपणा मिथ्यात्व की वृद्धि और हानि के समान है, अवस्थान उसका नहीं है। अभी हमने जो मिथ्यात्व में बताया ना, पहले गुण संक्रमण होता है बाद में विद्या संक्रमण है, उस अपेक्षा से वहां लेना। अनंतानुबंधी कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? उत्कृष्ट करना बराबर, उसकी उत्कृष्ट वृद्धि सर्वसंक्रम द्वारा अंतिम फाली को संक्रांत करने वाले गुणित कर्मांशिक के होती है। ये कब होता है सर्वसंक्रमण, याद है? सपना करता है ना, क्या करता है? विसंयोजना करता है। उसका भले हम सपना कहें परंतु विसंयोजना कहें ना हमको। उनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है उस प्रथम समयवर्ती सम्यक दृष्टि के, उनकी उत्कृष्ट हानि होती है। उनके उत्कृष्ट अवस्थान का कथन। हाँ, प्रथम समयवर्ती सम्यक दृष्टि के उनके वहां हानि। सम्यक्त्व का पहला समय, देखो गुणित कर्मांशिक रूप से है तो उसकी सत्ता में बहुत है कर्म, तो पहले समय सम्यक दृष्टि होते ही उसका बंद रुक गया ना, बंद रुक गया, अभी विद्या संक्रमण होगा। पहले अधा प्रवृत्त संक्रमण होता था, तो अनंतानुबंधी में कभी अंतर ही नहीं होता। अनंतानुबंधी की विशेषता है, मिथ्यात्व में अंतर हो सकता है, सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक प्रकृति में अंतर हो सकता है, चारित्र मोह की अन्य प्रकृतियों में अंतर पड़ता ही है, जो उपशम श्रेणी चढ़ता है या क्षपक भी चढ़ता है, अनंतानुबंधी में कभी अंतर पड़ता ही नहीं, उसमें हमेशा ही अप्रशस्त ही उपशम होगा। अन्य में अप्रशस्त प्रशस्त दोनों हो सकते हैं। संक्रमण तो चल रहा है, पहले भी बंद की अवस्था में भी संक्रमण है और बाद में भी है। ये 12 कषायों कल देखा था ना, देखो निकालना, वो स्वामित्व 410 में होता ना, अपने टेबल था, संवलन लोभ को वो 39 के साथ लिया था और 12 कषायों को वो 30 वाला लिया था, उद्वेलना के बिना चार संक्रमण बताए थे। तो जहां उसका बंद है, अनंतानुबंधी का पहले और दूसरे गुण स्थान में अधा प्रवृत्त संक्रमण है, और फिर जहां बंद नहीं है वहां उसका विद्या संक्रमण कहेंगे। देखो हम अपने पेज पर आते, फिर 464 पर आ गए ना अभी हम। प्रथम समयवर्ती समय दृष्टि के उत्कृष्ट हानि बताए थे, उनके उत्कृष्ट अवस्थान का कथन मति ज्ञानावरण के उत्कृष्ट अवस्थान के समान है। 8 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? जो गुणित कर्मांशिक सर्वसंक्रम द्वारा अंतिम फाली को संक्रांत कर रहा है, ये कौन करेगा? क्षपक, हाँ, 90 गुण स्थान वाला, उसके 8 कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि होती है। 2 प्रकार यानी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोध की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? हानि की बात चल रही है। जो गुणित कर्मांशिक उपशम श्रेणी पर आरूढ़ होकर 2 प्रकार के क्रोध को अनुपशांत रहने के अंतिम समय पश्चात अनंतर काल में मरण को प्राप्त हुआ है, यानी पहले वो अभी क्रोध को उपशांत करने जाने वाला था आगे के समय में, उसी समय में उसका मरण हुआ। उस प्रथम समयवर्ती देव के उसकी उत्कृष्ट हानि होती है, क्योंकि पहले ज्यादा होता था और देव में चौथे गुण स्थान में गया तो वहां कम होने लगा। 2 प्रकार के मान माया और लोभ की हानि की प्ररूपणा 2 प्रकार के क्रोध के समान है। 8 कषायों के उत्कृष्ट अवस्थान की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के अवस्थान के समान है। संज्वलन क्रोध की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? अभी ऊपर जो हमने देखा तो 8 कषायों की बात की थी, अब यहां संज्वलन क्रोध की बात कर रहे हैं। जो गुणित कर्मांशिक सर्वसंक्रम द्वारा अंतिम फाली को संक्रांत कर रहा है उसके उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। सर्वसंक्रम जब कहते वो क्षपणा वाला नहीं, क्षपक श्रेणी वाला ही लेना है, उसी के अनंतर काल में उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। अंतिम फाली को संक्रांत कर रहा है, सर्वसंक्रम द्वारा अंतिम फाली को संक्रांत करता है, और आवली वाले परंतु तो सर्वसंक्रम तो उसको कहेंगे ना, नीचे है क्या देखते हैं? नीचे नीचे देखो, यहाँ राइट साइड पे 465 पृष्ठ पर, कोह संजलन से उक्कस या वड्डी कस मिला, राइट साइड में, जस उक्कस हो सव संकमो तस उक्कस या वड्डी, ये तो ख्याल में आता है, तस्से व से काले उक्कस या हानि, नवरी से काले संकम पाओ का समय पबद्धा जहन्ना कायोवा, तम जहां जेसिम से काले आवलिय मित्तानम समय पबद्धानम पदे सगम शंका मिज्जहिदी ते समय पबद्धा तब पाओग जहन्ना, यदि ये परुणाए सव संकम संचुहिदून जस से काले पूव परुविदो संकमो तस्य उक्कस्या हानि कोह संजलनस्य तस्येव से काले उक्कस्यम अवठानम। यानी ये जो नवक समय प्रबद्ध है वो छोटा बांधा है उसने अंत में, और उसका जब संक्रमण होता है तो वो हानि वाला होता है। पहले गुणित प्रमाण में होता था ना, फिर बाद में वो जो नवक समय प्रबद्ध है उसकी बात यहाँ करते, वहां उत्कृष्ट हानि हो जाती है। उत्कृष्ट अवस्थान हानि में करना चाहिए, जैसे संज्वलन क्रोध की प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार संज्वलन मान माया पुरुषवेद और छह नौकशायों की प्ररूपणा करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वो जो अंतिम समय में जो होता है उसके बाद वो नवक समय प्रबद्ध जिसको कहते हैं उसमें जो मिनिमम समय प्रबद्ध बांधा है, पूरा तो समय प्रबद्ध नहीं होगा तो उसको घटता चला जाता है उसकी बातें। विशेषता इतनी है कि छह नौकशायों की उत्कृष्ट हानि उनके अनुपशांत रहने के अंतिम समय के पश्चात अनंतर काल में, यानी जहां वे उपशांत होने वाले थे उसके बदले क्या मरण को प्राप्त हुआ। जो मरण को प्राप्त होकर देव हुआ है उस प्रथम समयवर्ती देव के होती है चार नौकशायों का, यानी हास्य रति अरति और शोक का अवस्थान नहीं है, भय और जुगुप्सा के अवस्थान की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। अब इसी को विशेषार्थ में बताते हैं। यहां संज्वलन लोभ के स्वामित्व की प्ररूपणा नहीं की गई है, संभव है प्रतिलिपिकार की असावधानी से वह लिखने से रह गई हो। उसकी प्ररूपणा कषाय पाहुड़ चूर्णी सूत्र में इस प्रकार की गई है। संज्वलन लोभ की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है, जिस गुणित कर्मांशिक जीव ने अल्प काल में चार बार कषायों को उपशांत किया है तथा जो अंतिम भव में दो बार कषायों को उपशांत कर क्षपणा में उद्यत हुआ है, उसके जब अकृत अंतरकरण अवस्था का अंतिम समय प्राप्त होता है तब उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है, उत्कृष्ट वृद्धि होती है। हाँ, चार में ही लेना, क्योंकि वो चार ही बार कर सकता है। हाँ, मैक्सिमम अकृत अंतरकरण यानी अंतरकरण के पहले पहले की बात है। उसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है, देखो संज्वलन लोभ की बात कही ना, तो बाद में तो वो किसी में नहीं होता है, वो रुक जाते हैं उसके अन्य कषाय में, उसका अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाता है तो अन्य में नहीं होता संक्रमण। अब उत्कृष्ट हानि कब होती है, जो गुणित कर्मांशिक तीन बार कषायों को उपशांत कर चौथी बार उनके उपशांत करने में प्रवर्तमान है, वह जब अंतिम समयवर्ती अकृत अंतरकरण कर रहने के अनंतर समय में मरण को प्राप्त होकर देव होता है तब उसके देव होने के पश्चात एक समय अधिक आवली मात्र काल के बीतने पर उसकी उत्कृष्ट हानि होती है। उसके उत्कृष्ट अवस्थान की प्ररूपणा अप्रत्याख्यानावरण के समान है। देखो कषाय प्रावृत उन्होंने पृष्ठ वगैरह यहाँ बता दिए, अब यहीं रुकते हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। विनोद भाई,